प्रकरणों में स्वरूप लक्षण और तत्व लक्षण का विचार होगा। जैसे मेरा सौंदर्य समझो या किसी का एक आदमी का सौंदर्य, शरीर मूल वस्तु है, शरीर का सौंदर्य करना है, बढ़ाना है। शरीर का सौंदर्य दो तरह से, अपनी कांति को बढ़ाना, कांति बढ़ाएंगे जो शरीर में है उसी को संवारने से भी होगा, और एक दूसरी कोई चीज ऐड करके, दूसरी चीज ला करके उस सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे एक आदमी सुंदर है, सुंदर है, केश बिखर रहे हैं, केश को संवारते हैं, ये सब श्रृंगार है, मंडन। अतः आभूषण अलग से कोई चीज लिया और उसको पहने तो सौंदर्य, कर्णफूल, ये क्या सुंदर, अर्थे कपड़े, ये सब मुखोट, सुंदर सुंदर चीजें। कोई वस्तु दूसरी जगह से लाकर के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, और एक सौंदर्य उसका तो है ही है, उसको थोड़ा सा सवार करके और इधर उधर करके उसको बना देते हैं। राधा जी का जो स्वरूप है, उनका देह है, सब उनका चीद इंद्रिय, सभी कुछ चीद इंद्रिय है। जय हो राधा विनोद बिहारी जी की, वृंदा देवी की जय। तो राधा जी का, श्रीमती राधिका का स्वरूप विचार अर्थात महाभाव के द्वारा वो बनी। उनका चित्त, देह, इंद्रिय, काय, सब कुछ चिन्मय, और वो कैसा है? कृष्ण सच्चित आनंद है, कृष्ण का प्रेम ही उनका जो महाभाव कहलाता है वो राधिका जी का स्वरूप है। और कृष्ण का उनके प्रति जो स्नेह है, सखियों का जो स्नेह इत्यादि है, और सब जो चीजें हैं उनके, और दूसरे आभूषण वस्त्र इत्यादि है। और महाभाव को समझा जाए, जो किसको कल ही बात सोच रहा था किंतु भूल गया, महाभाव समझने के लिए समझना बड़ा कठिन है, समझा नहीं जाएगा। अभी साधारण रूप में ज्ञान के रूप में इसको थोड़ा सा जाना जा सकता है, वो भी जानेगा कौन जो इसको थोड़ा सा प्रवेश है, कभी नहीं जान सकते। जब साधन, साधन के द्वारा भाव उत्पन्न होगा, और ये साधन भी कैसे, दो प्रकार के साधन उत्पन्न होते हैं, एक होता है श्रद्धा के द्वारा, थोड़ा सा इधर हट करके बैठ जाओ तो लोग आकर के जो देखना चाहेंगे देखें, यू कैन सम डोंट डिस्टर्ब। तो श्रद्धा पर के ऊपर में सब कुछ डिपेंड करता है, मूल चीज है श्रद्धा। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, बीज जैसा होगा, उसकी भक्ति भी वैसे ही होगी, प्रेममयी होगी अथवा वैधी होगी, सब कुछ श्रद्धा के ऊपर में कर। बीज जैसा होगा, आम तो होगा, जितनी आम की गुठली है वो आम के बीज से होंगे, किंतु बीज जैसा रसाल आम का होगा, मीठा आम का होगा, पेड़ भी वैसा होगा, उसके फल भी सभी कुछ वैसे ही मधुर और सुस्वादु। इसलिए श्रद्धा दो प्रकार की हुई, एक श्रद्धा हुई लोभमयी और दूसरा शास्त्र शास्त्रमयी, एक कर्तव्य को दे करके चलते हैं, एक कर्तव्य को लेकर के चलते हैं, तो उससे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है शास्त्रों के भय से, उसके शासन से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है एक तरह की होती है। इससे वैदिक भक्ति साधारण रूप में बैकुंठ तक नारायण की सेवा इत्यादि तक पहुंचाएगी। और दूसरी प्रकार की जो श्रद्धा है लोभमयी, पूर्व पूर्व कोटि कोटि जन्मों की स्वीकृति या जापुष कहो, किसी प्रकार से भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ऐसे वैष्णवों का संग मिल गया और उनके संग से उस भक्ति के प्रति कुछ लोभ हुआ, तो ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। बिना रसिक वैष्णवों के ये लोभमयी कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। बहुत कीमती बेशकीमती चीज यह है, जिसको ऐसे लोभमयी श्रद्धा हो जाए समझो जो उसकी भक्ति आप दूसरे तरफ में चलेगी, ब्रज की तरफ में चलेगी। अब यही से बीज जैसा हुआ, धीरे धीरे लता भी वैसे ही बड़ी। श्रद्धा के अनुसार में यदि शास्त्र शासन वाली जो श्रद्धा है उससे निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव एक तरह का होगा, और रागमयी जो लोभमयी जो श्रद्धा है ये वहीं से उसमें से जो निष्ठा उत्पन्न होगी और निष्ठा से रुचि उत्पन्न होगी और रुचि से आसक्ति उत्पन्न होगी और उससे जो भाव होगा वो दूसरे तरफ की ब्रजमयी भक्ति का वो भाव आएगा। उसमें दोनों पहले से ही श्रद्धा से ही वो बीज से ही वो दूसरे दूसरे जाति के होते हैं। तो जिन लोगों को वैसी श्रद्धा नहीं है, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं हुआ, ऐसे भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन नहीं हुआ, तो वो लोग इधर में कभी भी नहीं आ सकते हैं। लाभ चेष्टा किया जाए और उनको लाभ मना किया जाए, उनकी भक्ति रागानुगा वालों का जो श्रद्धा है, रागमयी श्रद्धा लोभमयी श्रद्धा, वो उसी तरह में जाए। कोई लाख मना करेगा तो भी इधर नहीं मानेगा। इसलिए प्रारंभ से ही, इसलिए इसका प्रेम होगा और तरह का, उनका जो प्रेम उत्पन्न होगा वो बैकुंठ तक ले जाकर के भगवान के सेवा में, नारायण की सेवा में लगा दें और उनमें सुखोत्तरा अथवा प्रेम सेवा उत्तरा बस यहाँ तक ले जाकर के समाप्त कर। इसमें चार प्रकार की मुक्ति अथवा नारायण की सेवा तक ले जाएगी। अब लोभमयी वाली है वो कहीं नहीं रुकेगी, ब्रह्मांड भेद कर, वो ब्रह्मांड भेद करके वो परब्रह्म भेद कर, उससे ऊपर उठकर अयोध्या इत्यादि को भेद करके, गोलोक को भेद करके, द्वारका मथुरा को भेद करके, ब्रज में जाकर के उससे भी कृष्ण के चरण में, कौन कृष्ण के भजन नंदन, वो भी गोपीकांत राधाकांत उनके चरणों के ऊपर में पहुंच करके विकसित होकर के फल फलेगी। और साधक यहाँ उस प्रेम का साधन करके और लता को अवलंबन करता हुआ लता के ऊपर में चढ़ेगा और चढ़ते चढ़ते वो कहाँ जाएगा, जहाँ तक वो लता पहुंची है, और पुष्ट होता जाएगा उसके फल गिरते हुए और साधन करते हुए पुष्ट होगा इस धाम में ही। और लता को अवलंबन करके धीरे धीरे गोलोक वृंदावन में पहुंच करके उस डाली पर जाएगा जहां पर कि वो प्रेम फल पका हुआ है, उस वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए
विधि मार्ग छाड़ो, निष्ठा रुचि आसक्ति भावे पर गलो, भाव पर्यत गलो, ओखने तार लोभ हलो, आगे लोभ हलो ना, নিষ্ঠা রুচি আসক্তি কে ভাবে তে গেলে ভাবে গিয়ে ওখানে তার লোভ নেই শ্রদ্ধা হলো, এরকম হতে পারে কি?
ভাবে আমি বললাম যে স্যার শ্রদ্ধাটা আসছে ওই রকম,
আগে তার ওই লোহনী লাগানো না হয় ওইখানে পৌঁছিয়ে বিধিতে পৌঁছিয়ে
তা হতে পারে
পৌঁছে
তার ওই রকম আছে লোক ওই রকম কোন রসিক বৈষ্ণব পেয়ে গেল তারপরে হতে পারে হতেও পারে নাইও হতে পারে কোটি জন্ম সুকৃতির নলব্ধ হতে নাই হতে কোনো সার্টেন্টি নাই
বা প্রেমেতে পৌঁছে কোনো সঙ্গ চলে সেরকম সাধকে
প্রেমেতে কিরকম পৌঁছবে
এই দিদিমার্গে যে
প্রেম জন্য বলেছেন
দিদিমার্গে যে প্রেম পৌঁছালো
ওইটা বলেছেন বৈধী ভক্তি আরম্ভ হবে শ্রদ্ধা থেকে শ্রদ্ধা আরো বৈষ্ণব সঙ্গে ইত্যাদি থেকে আর ই শ্রদ্ধা তো থাকবেই কিন্তু আরম্ভ হবে কোথা থেকে রুচি না আসক্তি থেকে ওইখান থেকে রুচি থেকে একবার আরম্ভ হবে এই সব অনর্থন বৃত্তি ইত্যাদি এই সব কিছু ধার ধারবে না একেবারে ওইখান থেকে
ওইখান হতে পারে
হতে পারে কোন কোন বিশেষ হতে পারে অসম্ভব কিছু নয় অসম্ভব কারো হতে পারে যেরকম দিল্ল মঙ্গলের দেখা যায় ভাব থেকে আরম্ভই হলো এর পূর্ব পর্যন্ত তার ছাবি ছিল কোন কালে কালে জন্মকে ওই অনাথ সে গুচ্ছিতি হই ভক্তি ছিল আর এসে বাদ মে ও ঠোকর লাগা আর ঠোকর লাগতে হি ও ওকে আরম্ভ কর দিয়া সাধন জন কি বাদ কমই দেখি যাতি वहां तक साधन तक ऐसे समझ लो जो पहले ही हो गया है ऐसा समझ लेना चाहिए इसलिए बतलाया है कि ये जो भक्ति रगनवा भक्ति में दिखलाया और राजभक्त में चंद्रिका में जो पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार और संग से भक्ति कई एक उच्च अवस्था में शरीर को छोड़ा है तब इसके बाद में आरंभ हुई तो ये प्रबल रूप से होती है इसमें गुरुकरण ही आरंभ होगा वैसा रसिक वैष्णव से उसको ऐसा सुयोग मिलेगा मित्रपक्ष पूर्व जन्म के संस्कार से और कुछ साधन में अग्रसर हो गया तो इसलिए पहले ही वो जैसे तैसे लोगों के यहां वो गुरुकरण नहीं करेगा वो करेगा कहां रसिक वैष्णव के यहां वो नीचे में करेगा ही नहीं और वहां से वो बढ़ेगा और जिनको इस जन्म में ऐसी लोभमयी श्रद्धा हुई है तो अब वो लोग पहले गुरु कर लिए हैं सब कुछ हो गया है किंतु अभी तो रसिक वैष्णव मिला नहीं इसलिए उनको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु फिर से उनको हो करके तब फिर आगे बढ़ेंगे उनका भी संस्कार अभी कम है और उन लोगों का भी वो पहले से विचार कर कैसे सदगुरु करेंगे और ऐसे शिक्षा गुरु या उनका वैसा ही है और इन लोगों को फिर से अब करना पड़ेगा पहले कि आज जहां तहां हो गया इसके बाद में कोई वैष्णव मिल गए उनके साथ में हुआ अब तब फिर वो सोच समझ करके शिक्षा गुरु इत्यादि के द्वारा आगे बढ़ेंगे विशेष रूप से बतलाया है तो पहले हुआ तो यही जो लोभमयी जो श्रद्धा इसे जो बढ़ करके जो भाव हुआ अब भाव अवस्था तक वहां ये शरीर सहन करेगा इसके बाद में ये शरीर छूट जाएगा इसके बाद में योग माया के प्रभाव से सौ शक्ति के प्रभाव से ब्रज में जन्म होकर के अपने भाव अनुसार वहां पर अपने अनुकूल गोप और गोपियों का संगम उसको मिलेगा और उनके साथ में उनका जो प्रेम था अभी अब वो प्रेम परिपक्व होगा प्रेम से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव जहां तक उसका जाना है वहां तक जाएगा उन लोगों के संग में भाव तक ही साधन है इस जगत में प्रेम का इस जगत में कोई भी साधन नहीं है बल्कि अनुभूति भी नहीं है रसास्वादन भी नहीं है क्योंकि चिन्मय शरीर में प्रकट नहीं होने से और रसास्वादन भी नहीं करे भाव अनुभाव सात्विक ये सब भावावस्था में नहीं रहते करी कर उसका आभास रहता है इसलिए साधारण रूप से वहां पर आप प्रेम अवस्था में धीरे धीरे उपलब्धि करते हुए आगे बढ़ेगा तो यही प्रेम बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और भाव महाभाव को छूता है। पहले राग क्या
प्रेम प्रेम है सामग्री आदि विवाह अनुभव
ऐश्वर्य युक्त दास आसान बस এদিকে বেশি
অনেক সামগ্রী এখানে হবে না ওখানে কি সেই
ওদেরই যেরকম হয়েছে
এই জগতে হবে না ওই জগতে কি হবে সে নারায়ণ
যেরকম হতে আজামিলের হয়েছিল যেরকম হতে ওই রকম বুঝব শাসন করলো ভাব পর্যন্ত কিছু হলো তারপরে চারজন আসলো নিয়ে গেল ওখানে উনার যে প্রেমের বিকাশ কিছু আছে ওই পর্যন্ত উনকা ওহা তক জীবন হয়ে গেল সমাপ্ত উসকা আভাস ইহা পর और हम लोगों का माने महाप्रभु की धारा का रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि का देखो साधन में ही उनका कितना क्या हुआ सब चीज यहाँ पर सब सीख लिया शिक्षा हो गई थोड़ी सी अनुभूति रसा साधन है वो प्रेम पढ़ने के बाद में होगा यहीं पर सब चीज सीख हो जाएगी जैसा साधन है भावी वे जहाँ सिद्धि पे पाई वे तहा वही पाएगा जहाँ देर लोग हुए छे यही सब विचार करे ना तटस्थ हुए यही सब विचार आते तटस्थ होने पर ये विचार आएंगे क्योंकि जिसको हो गया है वो ये सब कुछ भी विचार नहीं करके वो बढ़ेगा तो भक्त स्वामी सिंधु ने उसमें दिया है राग के लिए जब कृष्ण विषय स्नेह अथवा स्नेह से बढ़कर के स्नेह मान प्रणय प्रणय जब अपने उत्कर्ष स्थिति में पहुंच करके एक ऐसी स्थिति में आता है जबकि कृष्ण विषय उसके जितने भी भीषण से भीषण दुख हो तो उसको सुख लगता है तब वो राग है वहां भयंकर दुख वो भी सुख जैसा प्रतीत होता है सुख हम मानते हैं ऐसा नहीं प्रतीति होती है आग में जल मरना आदमी दुख से तड़पता है किंतु कोई सूली पर चढ़ते हैं या आग में जल करके मरते हैं पहले कहा बहुत अच्छा हम देश के लिए मरते हैं हम इस काम के लिए मरते हैं किंतु दुख उनको होता है सुख नहीं है किंतु जब यथात्म वैसे सब दुख सुख प्रतीत हो तब तो ये होगा राग अत्यंत भीषण दुख भी जैसे
जगत में दुख में दुख में दुख की अनुभूति होती है कृष्ण सेवा में दुख में सुख की अनुभूति
तो ऐसा नहीं ये मान लिया कल्पना करके नहीं सचमुच में वो दुख दुख नहीं प्रतीत होता सुख होता है जे कैसे
सुख में दुख है
सुख में दुख नहीं क्या
मुझे दुख में सुख है सुख में भी दुख रहता
सुख दुख दुख के सुख मन करे ना अनुभूति है वही
अनुभूति
जे रकम होते एक्टिव थापड़ मारले दुख है किंतु एक जगते थे इस जगत में भी कोई प्रिया प्रियतम को चांटा लगा दे तो उनको सुख की प्रतीति हो सकती है उस जगत में जैसे उदाहरण दिया है राग किसको कहते हैं राग माने जब चित्त एकदम रंग जाता है कृष्ण के सेवा के रंग में एकदम रंग जाता है
जैसे
कांच में या लाह में गर्म करने पर उसी समय उसको रंग दे दिया जाए तो जब तक कांच रहेगा या लाह रहेगा वो रंग मिटेगा नहीं एकदम नित्य रंग हो जाएगा
मंजिष्ठा
मंजिष्ठा एकदम कभी नहीं छूटेगा। ऊपर से कोई रंग देता है कपड़े में जैसे ये है, इसको साबुन देने से उठ जाता है, किंतु वो नहीं उठेगा। क्यों? रोम रोम में उसका वो लग गया है राग। तो वो राग जो कि एकदम लाह को या कांच को गला करके उसने ही रंग दे दिया, उसी समय जब वो ठोस रूप धारण कर लिया वो रंग नहीं छूटेगा, एकदम पक्का रंग हो गया, तब ये राग होगा। और इस राग का तटस्थ लक्षण क्या है, ये तटस्थ लक्षण बतला रहे हैं। सुख में दुख में भी दुख भी सुख प्रतीत होता है, उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण वो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसको बतलाया वो क्या जो कल बतला रहा था ना, प्रेम का वो जो लक्षण बताया जैसे वो
संद्रात्मा
संविद और श्राधनी का सार, यही उसका स्वरूप है। तो यही प्रेम जब इस अवस्था में प्रणय होकर के उस पर उपस्थित होता है, जब जितने भी कष्टकारी दुख हो वो सुख प्रतीत होते हैं। जैसे मरना दुख है किंतु कोई किसी के लिए कहा गया स्त्रियों के लिए लज्जा छोड़ना, लज्जा नहीं छूटेगी भले ही मर जाए, आग में जल जाए, प्राण छोड़ दें किसी प्रकार से भी, किंतु लज्जा नहीं जाती। ऐसी जो लज्जा है पापीवाद धर्म है, ये भी सुख का प्रतीत होता है छोड़ने में। कैसे, जैसे कल बतला रहा था कहीं राजस्थान में जो कौन मुसलमान गया पद्मिनी को देखने के लिए, पद्मिनी उस समय में बेहतर सुंदरी थी, अल्लाह वो सुना जो पद्मिनी इस समय विश्व की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी किशोरी है, तो उसने राजस्थान के जो राजा भीम या कौन थे उनको संदेश दिया कि हम तुम्हारी स्त्री को नहीं चाहते हैं किंतु तुम उसको हमको एक बार दिखला दो जो कैसी सुंदरी है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, कांच में दर्शन कराएंगे, दर्शन में देकर के देख करके दर्पण में उनकी छवि देख करके, और उसने इच्छा के लिए अभी इसको हम मार करके सबको और उसको ले लेंगे। उसने कहा कि पत्नी को हमारे यहाँ भेज दो ना, तो चारों तरफ से सेनाएं घेर रखी है, अभी तुम्हें कत्ल कर देंगे।
माना जी वहां पर देखा उस सरोवर के अंदर में एक चाकू बनाया, तो उसके अंदर में पद्मिनी को रखा, और उधर किनारे में बहुत दूर वहां से करीब 50-60 दूरी पर वहां पर वो घर है, वहां पर वो शीशे में दिखा है कि यहीं से दिखा,
वहीं से दिखा।
तो जितने दूर में देखा कि यहाँ देख कर जो बहुत,
तो वहां पर मैंने कहा जो हमारे पास में भेज दो, इन लोगों ने अंगीकार कर लिया अच्छा भेज रहे हैं, कभी भेजेंगे 360 पालकी आ जाएंगे उनकी सहेलियों के साथ में जाएंगे, और उसमें कहाँ रहेंगे चार, कहे ठीक। तो उस समय में एक एक क्षत्रिय योद्धा उसमें बैठ गया स्त्री का वेश धारण कर, और पालकी वाले सब युद्ध वाले क्षत्रिय लोग रह गए, और ये सब लोग एक एक योद्धा को लेकर के गए, और इधर वह जो युद्ध होगा और जितनी पद्मिनी और जितनी भी वहां की स्त्रियां हैं वो सब आग जला करके सब उसमें कूद पड़ी, प्राण दे दिया, और वो भी वहां पर कत्ल होकर के मारे गए। अब 10-10 तो 20-20 को उन्होंने मारा और अपने भी खत्म हो गए। और यहाँ की स्त्रियां जितनी थी राजस्थान की, इसी को कहते हैं जौहर प्रथा।
जौहर
जौहर जौहर मैंने क्या जौहर माने जौवन को जो हरण करने वाला पति, पति का जो पतिव्रत धर्म है,
जौहर
आया समझ में। आया समझ में कुछ?
अरे जो घर का धर्म करने वाला जो पशु
जो वहाँ पर था ना, जो श्लोक का थी कौमार हर माने की कौमार का हरण करता है कौन? पति बस है। तो उसी तरह से यहाँ पर जौहर
ये मराठी शब्द है,
तो इस तरह से वही पति प्रसाद धर्म इसी का प्राप्त, उसी में आग में जल करके सभी खत्म हो गई और वो लड़ कट करके खत्म हो गए, किंतु लज्जा आपने नहीं छोड़ी, पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। और उस धर्म को जिसके लिए कर रही है, हंसते हंसते आनंद से परम सुख समझ करके गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। कितना बड़ा चीज है ये, इस व्रत को उन्होंने जिसके लिए उन्होंने प्राण दिया, कितने एक नहीं लाखों लोगों ने प्राण दे दिया, और उसको अमृत समझ करके उसका पान करने के लिए सभी व्रत को ये सब को छोड़ करके और चले गए कृष्ण। इसलिए ये दुख की बात है, कोई बात ना तो बात को ज्ञानी होती। और अब जैसे कि हम सालाबाद बेटी कथा बतला रहे थे वहां
पूरी में,
उस नवज्योति विधवा लड़की को सुंदरी को मुसलमान लोग पकड़ करके ले गए और जबरदस्ती अपने घर में रखा, उसके घर में कैसा सुख चुभ रहा होगा, कैसा सुख, एक एक क्षण कितना सुख। और विवाह के बाद में जब बच्चा हुआ होगा और उस बच्चे को देखती होगी कैसा लगता होगा उसको, अंत तक जब तक जीवित रही सुन बेधता रहा। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ा, अपने देह और दैहिक सब को छोड़ दिया, उनको ये दुख लगा कि सुख लगा, परम सुख लगा सबको, तिल मात्र भी देह दैहिक पति इत्यादि आभूषण खाना पीना जो कुछ सब कुछ छोड़ दिया। जब प्रेम ऐसी स्थिति में पहुंचे तो समझो ये राग है। ये इस साधन के द्वारा कभी संभव, साधन में नहीं संभव है, ये वहां पर हो सकता है गोपियों के संपर्क में, ब्रज में ही हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर भावावस्था तक कुछ होगी बिल्ल मंगल को, या रूप सनातन रूप रघुनाथ गोस्वामी ने जहाँ तक अपने बाह्य शरीर के द्वारा दिखला है, उनका बाह्य शरीर तो नहीं था किंतु हम लोग जिस शरीर को देख रहे हैं उसके द्वारा, हाराधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद तले कालिंदी बन्ने कुत वोषंतारी सर्वतई खेदई महाविपलो महाविपलो। हम लोग जाते हैं तो हे राधे कहते हैं, ललिते हे वृंदावन धाम कृपा करो कहते हैं, विवलता कुछ है उस विवलता नहीं। और ये विवल होकर के कहां लोट तोड़ रहे हैं जमीन में, होश नहीं है शरीर का, और उस शरीर को कृष्ण स्वयं संभाल रहे हैं, ये महावा विवल अवस्था है। अंततः साधन में भी ऐसा होना चाहिए, भाव अवस्था में उनका जो साधन है ना, भाव के लिए जो साधन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उसी तरह से महाविवल होकर के करते हैं। हम लोग को भी वैसा ही होगा, न खाने की रही सुध, न पीने की सुध रही, न बसन की सुध रही, न रात कोई रास्ते का सुध रहा कहीं नहीं, उस समय सुध नहीं रहेगी, चिरौनी लेकर के ऐसा ऐसा करेंगे, हाथ रंगेंगे ये सब नहीं रहेगा, क्या खाएंगे ये सब सुध नहीं रहेगी, भोजन बनाने की भी सुध सुध नहीं रहेगी, हम कौन हैं ये भी शुद्ध नहीं रहेगी, वो नारायण है ना, नारायण कोई कवि है उन्होंने इसको लिखा है,
नारायण भट्ट
कोई नारायण बहुत उनके बड़े बड़े सुंदर गौड़ीय वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव उन्होंने इस सबको लिखा वर्णन किया है, रही न शुभ तन मन की या क्या बिसर गई, ये सब ऐसा सुंदर लिखा है। तो ये हुआ राग, जब राग अपनी अत्यंत सर्वोच्च स्थिति में जब पहुंचता है तो दोष की स्थिति होती है, क्या होता है, अनुराग स्वसंवेद्य दशां प्राप्य प्रकाशित। जब यह राग अपनी सर्वोच्च स्थिति में पहुंचकर स्वयं स्वयं सभ्य दशा में उपस्थित होता है और तथा जावद आश्रय वृत्ति चेत भाव, तब वो भाव कहलाए, तब आखिरी अंतिम स्टेज में जाकर जो उसकी स्थिति होगी, एक स्वसंभिद्ध दशा को प्राप्त करेगा वो अनुराग, और दूसरा जावद आश्रय वृत्ति को जबकि वो पहुंच जाएगा तब इसको भाव कहते हैं। पहले वाला जो भाव था आसक्ति के भाव वाला, वो भाव नहीं है, उसको मत समझो, वो प्रारंभिक स्टेज है। इसका अभी
जनार्दन एक दिन जनार्दन महाराज प्रश्न करे थे, बोले अच्छा बोलो तो प्रेमेर सार भाव भाव महाभाव जान, तो भावेर परे तो प्रेम है, एखाने बोले प्रेमेर सार भाव।
इसलिए वो भाव नहीं जिसको कहा गया है क्या शुद्ध
सत्व,
ये नहीं,
उसको रति कहा है,
उसको रति कहा गया बस,
सामान्य रति।
किंतु रति शब्द का भी प्रयोग उसके लिए है, महाभाव इत्यादि के लिए। कृष्ण रति गोपियों का, तो गोपियों का कृष्ण रति, ये रति और भाव नहीं है, ये भी इसको भी समझना चाहिए। वो स्वसंभिद्ध दशा किसको कहते हैं और जावदास्त वृत्ति किसको कहते हैं, थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। सबको उसके प्रति लोभ होगा, नहीं तो लोभ कैसे होगा ने? तो उसके लिए बतलाते हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी एक स्वसंभिद्ध का यह अर्थ किया है, जिसमें जहां से अनुराग परम पराकाष्ठा पर्यंत उपस्थित हो जाए, कुछ है जहां से कहां से सही अनुराग का कुछ है जहां तक पूर्ण अवस्था तक प्राप्त हो जाए, ब्रजगोपी कोई ब्रजगोपी रही एकमात्र संविद्ध, केवल उन्हीं की अनुभूति का विषय हो सकता है और किसी का नहीं, तब इसको कहते हैं भाव, तब इसको कहेंगे भाव। ये समझा, फिर से समझो, चलो जब
बोले थे हम
पूरा, जब अनुराग अपनी चरम उत्कर्ष अवस्था में उपस्थित होता है, जिनमें मैंने जहां थे कहां थे गोपी थे, कोई गोपी बने रही अनुभव होते पारे, वो क्या बोलते भाव, आर कारो उसका बुझते पारा जाए ना, अनुभव करते पारे मैंने कि कोई रकम अनुराग कर्म अवस्था तक जे जहां पे पावा जाए, मैंने जिस गोपी में पाया जाता है बस उसी के अनुराग के द्वारा ही ये अनुभूत होता है, उस अनुभव को भाव कहते हैं। सुने लो तापर निजे पर विचार करे, जहां देर सौभाग्य तारा पर बुझेगा। ये भाव बड़ा दुर्मूल्य, बहुत कठिन। जसोदा मैया में अनुराग तक कहा गया और सखा में भी सखभा में अनुराग तक कहा गया। उनमें से सुबल, अर्जुन, लवंग, मधुमंगल, इन लोगों के भाव अनुराग भाव और कुछ कुछ महाभाव तक पहुंचे, बस ऐसा है, इन्हें यह सहज नहीं। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आप बतला रहे हैं दार्शनिक भाषा में, हम लोगों को समझने लायक बतला रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी कुछ थोड़ा सा अनुमान कर सकें, सभी लोग अनुमान नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि इस चीज को समझने के लिए ये समझो, अनुराग के द्वारा ही अनुराग समझा जाएगा, विशेष करके कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य और उनका जो ये सब ललित क्या
लीला ललित माया,
ये सब जो चीजें हैं ये वो भाव नहीं आने तक नहीं समझा जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोगों को उतनी श्रद्धा भी नहीं है, अभी कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा माने क्या, दो थप्पड़ मारेंगे कि मत आना, भगवान का नाम मत करना तो भाग जाएंगे, यदि रहेगा तो तुम्हारा ये गौड़िया मठ में यहाँ रूप सनातन में मठ में रहेगा तो जान से मार डालेंगे, खबरदार यहाँ मत रहना, बस यहाँ से श्रद्धा श्रद्धा लेकर के घर में चले जाएंगे। खूब श्रद्धा हो रही है, बहुत श्रद्धा हो रही है, कहीं नजर लग गई बस छोड़ दिया सब, कहीं अच्छी 5,000-10,000 रुपए की नौकरी मिल गई, कौन करता है बेकार का, ये सब चलो घर में जाए। ये सब अभी कोमल श्रद्धा है, इससे वो काम नहीं समझे जाए। जिसमें वो सब पढ़ करके वैसा अनुराग हो तब कृष्ण का माधुर्य अभी मालूम पड़ेगा। अभी नाम लेने में हम लोग सोचते हैं कि नाम लेने से क्या होगा, नाम लेने से क्या होगा, अभी अनर्थ दूर होगा, अपराध दूर होगा, ये सब दूर हो जाएगा, हम लोग नित्य कोई एक ऐसी वृत्ति पाएंगे तब फिर कुछ अनुभव होगा। शास्त्र में इसकी वंदना दी गई है, इसलिए हम नाम करते हैं। कृष्ण की का नाम, कृष्ण की कथा परम मधुर है, मधुर लगता है, अनुभूति होती है, अनुभूति नहीं, रसगुल्ला हम खाते हैं तो मधुर लगता है, किंतु कृष्ण नाम करते हैं तो मधुर लगता है, कृष्ण की कथाएं उतनी मधुर लगती हैं, नहीं लगती। इसका कारण यह है कि हमें अभी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम और ये सब चीज नहीं है, इसलिए जिसको जितना अनुराग होगा कृष्ण के माधुर्य को, सौंदर्य को, उनके गुण को, उतना ही अनुभव करेगा, वो अनुभव करेगा। इसलिए जिसमें अनुराग नहीं है कृष्ण के, ये सब जो मधुरमाएं हैं चार प्रकार की, विशेष करके रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला और बेणु माधुरी, अनुभूति का बेटा नहीं सुन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत मधुर है, मधुर 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 मेतन मंगल मंगल सकल मंगली सकल सकदपि परिगीतम सद्धया हे दया त्रिगुमर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। मधुर 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 मेतन नाम श्रेष्ठम मनुमति सचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रगौरी कुरिमाधुरी गोष्ठवासी राधाकुंडम गिरिवर महो राधिका माघवासम प्राप्त जस शेषम प्राप्त आम अभी नहीं, अभी प्राप्त नहीं, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा जाए प्राप्त हम, उन्होंने कहा है राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप सनातने आर लीला माधुर्य इत्यादि ये आशा में प्राप्त हुए थी, माने रोग प्राप्त में हुए थी, रोग प्राप्त हमारा लोग प्राप्त हुए थी कि पहले श्लोक का पौड़ी क्या नाम हमारा वो जो न पाई ने जो हमारा प्राप्त हुई थी, हम लोग प्राप्त हो गए इसलिए नहीं पास करते, हम लोग कहते हैं यदि इस श्लोक के पास करने से रघुनाथ दास गोस्वामी की कहीं कृपा ऐसी हो जाए, फीका फीका कहीं लग जाए, इसलिए इसको पास करते हैं। इसलिए कभी यह ऐसा मत समझना जो प्राप्त हो गया, प्राप्त नहीं हो गया, प्राप्त से अभी प्राप्त कोष दूर है, इसलिए आशा हमारे अंदर में उदित हो उनकी कृपा से, इसलिए हम ऐसा पाठ करते हैं, इसलिए हुआ नहीं। इसलिए जिसके अंदर में अनुराग प्राप्त नहीं हुआ है वो कृष्ण के माधुर्य को नहीं आस्वादन कर सकता, इसका यही एक कारण है ना? तो वो बतला रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, ये समझो तीन चीजें हैं अनुराग में, अनुराग में एक कारण है, एक कर्म है, एक भाव है, तीन चीज कर्ण कर्म और भाव। कर्ण किसको कहते हैं, कर्ता कर्म कर्ण न, कर्ण माने क्या, कलम से लिखता हूं उन्हीं का तो बतला रहा है ना पहले जैसे वो कारण है कलम से लिखता हूँ
माता
ढूंढे ढूको बुझो कलम से लिखता हूँ कलम द्वारा लिखी लिखी के लिखे आमी किसे द्वारा लिखी
कलम द्वारा
कलम द्वारा
लिखा कर्म
लिखा टा हलो
क्रिया
क्रिया किंतु कोनो कारणवशत लिखी ওই জন্য ওটা কর্ম হবে। আমি চিঠি লিখছি, এই চিঠিটা হল লিখা, তাহলে ওই সময় ক্রিয়া ভি কর্ম মে মিল যায়গি, ওই ক্রিয়া সকর্ম ক্রিয়া কহলায়গি, না তো অকর্মক হয়ে যায়গি। আচ্ছা আপ পালে সমঝো, পহলে বালা কারণ প্রেম কে দ্বারা হি, অনুরাগ কে দ্বারা হি কৃষ্ণ কা ইয়ে সব মাধুর্য সাধন হতা হয়। बिना प्रेम के अनुराग के ये कृष्ण इतने मधुर हैं, राधा जी को सबसे अधिक प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें सबसे अधिक अनुराग है। कंस को कृष्ण वही दिखते हैं, जरासंध को वही कृष्ण दिखते हैं, किंतु उनको वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? शत्रु लगते हैं। क्यों? क्योंकि अनुराग नहीं है, बल्कि अनुराग के प्रति विराग है, उल्टा विराग है। इसलिए उसको देखकर के चिढ़ जाता है, क्रोध से भर जाता है। तो जिसमें जितना ही अनुराग रहेगा, वो अनुराग के द्वारा ही हम लोगों में अनुराग का कुछ एक आभास कहो या जो कुछ भी है, इसलिए कृष्ण की कथाएं और ये सब बातें अच्छी लगती है। राजनीति जो जानने वाले हैं, उनको कोई लीडर आएगा सभा में, वो कुछ बोल रहा है, उसको बड़ी नीचे वहां पर दौड़ करके जाए। आप लोग नहीं जाएंगे। क्यों?
रुचि नहीं है।
रुचि माने अनुराग का जो एक छोटा सा पार्ट है रुचि, वो रुचि भी नहीं। रुचि क्या है? अनुराग का ही एक फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंतर है
प्रथम पार्ट,
इसलिए उधर नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। और हम लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ये जबकि अनुराग की पराकाष्ठा में पहुंच जाएगा, तो कृष्ण का ये जितना चलना फिरना देखना बंसी बजाना, उनका रूप उनका गुण उनकी लीला, ये सब परम मधुर लगेगी और छोड़ा नहीं जा सकता। ललिता विशाखा जी हैं, चित्रा जी हैं और चंद्रावली हैं और राधा जी हैं। वियोग हुआ, कृष्ण चले गए मथुरा। अब ये किसको अधिक वियोग हुआ? सबसे अधिक यशोदा मैया को भी वियोग हुआ, नंद बाबा को वियोग हुआ, किंतु नंद बाबा से वियोग अधिक हुआ यशोदा मैया को ना? सखाओं को भी वियोग हुआ, किंतु इन सखाओं से यशोदा मैया का वियोग लाख गुना अधिक है। क्यों? बात्सल्य भाव का अनुराग गुना अधिक है इसलिए। और नंद बाबा का भी कृष्ण के लिए रो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यशोदा जी बात भी नहीं कर रही। वो आए उद्धव जी की उनकी बातें सुन करके बस रो रही हैं आंख बंद, और कुछ नहीं। इसलिए उनमें अनुराग अधिक, और उनसे भी अनुराग गोपियों में है। गोपियों में अनुराग का तारतम्य है, तभी अनुराग एक समान नहीं है, एक समान है ना, तारतम्य है। ललिता विशाखा जी राधा जी को समझाती हैं कि तुम धैर्य धारण करो, कृष्ण कल आ जाएंगे। क्यों धैर्य दे रही हैं? उनको भी विरह है, किंतु उनका अनुराग चरम स्तर इतना नहीं है जो राधा जी में है, इसलिए राधा वियोगिनी को ये समझा रहे हैं। उनको भी है दुख वियोग का, किंतु उतना नहीं, ये भी समझाने की स्थिति में है। उन्हें चंद्रावली जी का ऐसा है, समझाती हैं राधा जी को वियोग की स्थिति में, उनको सांत्वना देती हैं। वो बतलाया था ना, कहाँ बतलाया था? साक्षी गोपाल में बतलाया था, जब उनको वो संतोष संतना देती है। इसलिए अनुराग के ऊपर में निर्भर करता है कृष्ण का ये माधुर्य असाधारण। इसलिए अनुराग जिसको होगा, अनुराग के द्वारा ही कृष्ण का प्रेम कृष्ण का माधुर्य असाधित होता है, इसलिए ये कर्ण हुआ अनुराग। बिना अनुराग के कृष्ण के माधुर्यों का आस्वादन नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर कर्ण हुआ। ये होता है चित अंश से, राजनी है ना, वो स्वरूप शक्ति, उसमें एक चित शक्ति है, वही चित होता है ज्ञान, और ज्ञान परिणत होकर के भाव होता है, यही भाव ही अनुराग है। इसलिए इसके अंश से
सद्बंध बड़ो वर्तन सुप्रभा